नमस्कार भारत, पहली नवंबर मंगलवार। भोपाल में मारे गए 8 सिमी कार्यकर्ताओं के वकील ने कहा पुलिस मुठभेड़ फर्जी, जाएंगे अदालत।
मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, हाईकोर्ट से सीबीआई की जांच करूंगा, सीबीआई जांच की इंक्वायरी।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी की सीमा पर दिवाली को लेकर उठे सवाल। मायावती ने कहा शहीद जवानों के परिवार के साथ बिताते तो होता ज्यादा अच्छा। और जब हिलेरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी एफबीआई पर उठा रहे हैं सवाल, राष्ट्रपति ओबामा के कार्यालय ने डायरेक्टर जेम्स कोमी के पक्ष में बोला।
It's important for officials at the Department of Justice and the FBI to make these decisions consistent with their institutional responsibility.
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज भाषा से। भोपाल में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए फरार विचाराधीन कैदियों के वकील ने कहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। भोपाल पुलिस ने सोमवार को बताया था कि प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े 8 विचाराधीन कैदी भोपाल जेल से फरार हो गए हैं। बाद में पुलिस ने इन्हें भोपाल के पास एक एनकाउंटर में मारने का दावा किया था। राजनीतिक दलों ने पुलिस के इस कथित एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। इटली के अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि रविवार को आए शक्तिशाली भूकंप में बर्बाद हुई इमारतों और गांवों को फिर से बनाने में करीब $9 अरब का खर्च आएगा। कैबिनेट बैठक के बाद बोलते हुए प्रधानमंत्री मैथ्यू रेंजी ने कहा है कि लोगों को अस्थायी रूप से रखने के लिए शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इटली के मध्य इलाके में रविवार को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे कई शहरों को भारी नुकसान हुआ है और प्राचीन इमारतें धराशायी हो गई हैं। इसी इलाके में अगस्त में आए भूकंप में करीब 300 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री मैथ्यू रेंजी ने कहा, सबसे पहले हम लोगों को प्रभावित इलाकों से दूर होने के लिए कहेंगे। दूसरे चरण में हम लोगों को शिपिंग कंटेनरों में रहने की व्यवस्था करेंगे। हम जानते हैं कि छोटे लकड़ी के घरों में रहना ज्यादा आरामदायक है, लेकिन ऐसा करने में ज्यादा समय लगेगा और सर्दी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में टेंटों में रहना संभव नहीं है। पाकिस्तान में विपक्षी नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के हजारों समर्थकों ने कहा है कि वो बुधवार को राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी सरकार विरोधी रैली में शामिल होंगे। सोमवार को पुलिस ने इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे इन समर्थकों को रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। रास्ते में लगाए गए कंटेनरों और अन्य अवरोधकों को हटाने के लिए इमरान खान के समर्थकों ने क्रेनों का इस्तेमाल किया है। देश भर में सैकड़ों इमरान खान समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के अंतिम दिनों में विवाद खड़ा करने वाले हिलेरी ईमेल मामले में अब अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ओबामा को नहीं लगता है कि एफबीआई के निदेशक जेम्स कोमी ने चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोमी के हिलेरी ईमेल मामले की जाँच फिर से शुरू करने की तीखी आलोचना की है। जेम्स कोमी ने शुक्रवार को सीनेट को लिखे एक पत्र में कहा था कि एफबीआई हिलेरी के निजी ईमेल सर्वर इस्तेमाल करने की फिर से जांच शुरू कर रही है, जिसमें पता लगाया जाएगा कि उनके ईमेल में गुप्त जानकारियां थीं या नहीं। वहीं हिलेरी ने कहा है कि एफबीआई की जांच में वो पहले की तरह बरी साबित होंगी। रिपोर्टों के मुताबिक इस विवाद से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंच रहा है। बीबीसी समाचार।
आप इस वक्त सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो का सुबह का पहला प्रोग्राम नमस्कार भारत, फैसल महमूद अली से। सोमवार को पाव फटी रही थी कि मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर आई कि पुलिस ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया या सीमी के 8 कार्यकर्ताओं को मार गिराया है। पुलिस का कहना था कि ये लोग भोपाल सेंट्रल जेल से एक सिपाही की हत्या कर दीवार फांद कर भाग निकले थे, जिसके लिए इन्होंने चादर का सहारा लिया था। लेकिन कुछ ही देर में कथित मुठभेड़ के तरीके, कैदियों के भोपाल से भागने के बाद भी वहीं पाए जाने और दूसरी कई बातों को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सूबे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मामले की एनआईए से जांच कराने का ऐलान किया है। मुठभेड़ में मारे गए कुछ लोगों के वकील ने कहा है कि वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल से शूर्य न्याजी।
भोपाल सेंट्रल जेल से फरार सीमी के 8 कार्यकर्ताओं की कल कथित मुठभेड़ में मौत के बाद अब सीमी के कार्यकर्ताओं के वकील परवेज आलम ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने की बात कही है। परवेज आलम ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है।
मैं हाईकोर्ट लाऊ, मैं हाईकोर्ट से सीबीआई की जांच करूंगा, सीबीआई की जांच ड्यूटी से इंक्वायरी बता लू। ये सिटिंग एनकाउंटर है, एनकाउंटर है। देखिए, ये पुलिस वालों को अपना हेडिक खत्म करना था। पुलिस वालों के लिए अपने मतलब पुलिस वाले नीचे आते थे कि ये एक तरीके से, अब मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूंगा, मेरा डिफेंस डिस्क्लोज हो जाएगा इसमें। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ।
इस कथित मुठभेड़ के बाद राजधानी भोपाल में दिन भर गहमा गहमी रही। इस मुठभेड़ पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। सोमवार को इस कथित मुठभेड़ के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को बुलाकर घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के सवालों को पूरी तरह से टाल दिया। वहीं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बचते रहे।
के लिए पुलिस को ही ऑथराइज किया हुआ है ब्रीफिंग के लिए, वो ही सारा ब्रीफ करेंगे घटनाक्रम, चूंकि वो सारा घटनाक्रम मौके पे थे तो वो उनके द्वारा ही ब्रीफिंग होगी। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है और इसमें राजनीति नहीं होना।
शाम में भोपाल पुलिस ने एक पत्रकार वार्ता बुलाकर इस मुठभेड़ की जानकारी दी। भोपाल आईजी योगेश चौधरी ज्यादातर सवालों के जवाब में जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें हैं जिनकी जांच की जानी जरूरी है।
केवल जो हमारी पूरे दिन की गतिविधियां चल रही थी, हम उसी में अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आपने जो वीडियो फुटेज का बताया है, अगर वैसा वीडियो फुटेज है, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में उसको कंसीडर किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा।
इस बीच मुठभेड़ में मारे गए सीमी के कुछ कार्यकर्ताओं के परिवार वाले भी सामने आ रहे हैं, जो इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। सोमवार की सुबह भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए सभी 8 सीमी कार्यकर्ताओं को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। ये सभी कार्यकर्ता रविवार देर रात जेल कांस्टेबल की हत्या कर भाग निकले थे। जेल से भागने के बाद सभी कार्यकर्ता भोपाल के पास ईंटखेड़ी इलाके में छुपे थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली और एनकाउंटर में सभी को मार गिराया। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
यहाँ ये बता देना जरूरी है कि सीमी एक प्रतिबंधित संस्था है और जो लोग कथित इनकाउंटर में मारे गए थे उन पर दूसरे मामलों के अलावा देशद्रोह का भी मुकदमा चल रहा था, लेकिन अदालती सुनवाई पूरी नहीं हुई थी। हाल के दूसरे कई मामलों की तरह पुलिस के कथित मुठभेड़ पर भी लोगों में भारी मतभेद नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसे देश की सुरक्षा का मामला बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि जब देश में हाई अलर्ट जारी था तो इतने कैदी एक साथ भागने में कैसे कामयाब हो गए और इतने खतरनाक कैदी उनके शब्दों में एक साथ एक ही जेल में कैसे रखे गए थे। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव से पूछा कि सरकार के सामने उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, उनके जवाब सरकार ने कहा है दिए हैं, क्या वो उस जवाब से संतुष्ट हैं?
पहली बात तो इतनी त्रुटि हुई कैसे, जब पूरे देश भर में हाई अलर्ट था और दिवाली का त्योहार था, इतना बड़ा जेल ब्रेक हो गया और उनकी सुरक्षा करने के लिए 2 सुरक्षा कर्मी थे जिसमें से एक की उन्होंने हत्या कर दी। ये घटना मध्यप्रदेश में पहले नहीं, इससे पहले भी खंडवा में इस तरह की घटना हो चुकी। इतनी बड़ी त्रुटि, इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है सिक्योरिटी में? दूसरा, जो जेल का मैनुअल होता है उसमें स्पष्ट होता है कि जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनको एक बैरक 8 से ज्यादा नहीं रखा जाना चाहिए। 35 को क्यों रखा गया?
सरकार का कहना है कि पूरे मामले की NIA जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कांग्रेस भी जांच की मांग कर रही है, फिर दिक्कत क्या है?
नहीं देखिए, एक तो हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होना चाहिए एंड मे बी अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बड़ा सीरियस इशू है ये। वो फरार होते हैं और 8-9 घंटे तक काल के आसपास आतंकी घूम रहे हैं और फिर उनके पास हथियार भी हैं वो, तो ये भी एक आशंका होती है कि क्या हो रहा है इसमें। और इस घटना में कहीं ना कहीं मुझे आंतरिक शक्तियों का षड्यंत्र भी इसमें लगता है और ये पूरी विभाग की लापरवाही है, पूरे सरकार की लापरवाही मैं कहता हूँ। तो इसमें कुल मिलाकर हाई लेवल जुडिशियरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।
मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस मामले को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है, आप क्या कहेंगे?
नहीं, राजनीति का सवाल नहीं उठता ना, जो सवाल मैंने पूछे हैं सरकार से, उन सवालों का सरकार ने जवाब किया है और इसमें पूरी सरकार इसमें संदिग्ध के घेरे में आती है। ये चूक कैसे हुई? ये देश की सुरक्षा का सवाल है। रोज आतंकी हमले हैं देश में हो रहे हैं और चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो जिम्मेदार सरकार है, जो अपनी जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती है। अगर मध्य प्रदेश में ये हुआ है तो क्यों हुआ और हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं उठता है।
जो लोग खंडवा जेल से भागे थे उनमें से कुछ वो कैदी भी थे जो इस बार पुलिस के हिसाब से भाग निकले थे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्यौहार सीमा पर सैनिकों के साथ मनाया, लेकिन एक दिन बाद उनके इस कार्यक्रम पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने एक बयान जारी करके कहा है कि सीमा पर जाने की बजाय प्रधानमंत्री को उन सैनिक परिवारों के साथ होना चाहिए था जिन्होंने सीमा पर अपनी जान गंवाई है। सुनिए समीर आत्मन मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के हर क्रियाकलाप राजनीति की ही निगाह से देखे जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर हो रही राजनीति अभी थमी भी नहीं थी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा पर सैनिकों के साथ मनाई गई दिवाली की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। अब की बार प्रधानमंत्री के इस कदम पर सवाल उठाया है बीएसपी नेता मायावती ने। मायावती ने एक लंबा बयान जारी करके कहा है कि बेहतर होता अगर प्रधानमंत्री सीमा पर मारे गए सैनिकों के परिवार के साथ दिवाली मनाते। यही नहीं, मायावती ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री को ऐसे सैनिकों के परिजनों को दिल्ली में एकत्र कर उन्हें अनुग्रह राशि और दूसरी सुविधाएं देनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
प्रधानमंत्री जी हमेशा हर दिवाली पर हमारे जो जावा सिपाही हैं, जो सीमा पर जो हमारी माँ भारती की रक्षा के लिए प्रहरी का काम करते हैं, उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा दिवाली उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह के बयान एकदम गैर जिम्मेदाराना है और बहुत अनुचित है। मायावती जी ने हमेशा से वोट और नोट बैंक की राजनीति की है।
मायावती ने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से एलओसी के पास सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। मायावती के इस बयान पर बात करने के लिए उनकी पार्टी का कोई नेता तैयार नहीं है। राज्य विधानमंडल दल के नेता गया चरण दिनकर बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना कह पाते हैं,
बयान आया है तो अब उस बयान के आगे हम थोड़ी कुछ बोल पाएंगे, अभी बयान हमने देखा नहीं।
मायावती ने प्रधानमंत्री के इस कदम पर भले ही सवाल उठाए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप रहना ही बेहतर समझा है। अन्य दलों के नेताओं ने पूछने पर इतना जरूर कहा कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक मामले पर भी जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो चुकी है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
छत्तीसगढ़ राज्य की नींव आज के दिन ही 16 साल पहले रखी गई थी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर पहुंचने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन जेल भरो का ऐलान किया है। रायपुर से आलोक पुतल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की इस 16वीं वर्षगांठ पर राज्य की भाजपा सरकार ने 5 दिनों तक राज्य भर में तरह तरह का आयोजन किया है। नई राजधानी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। वहीं देश के पहले मानव निर्मित जंगल सफारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आयोजन जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण है।
दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा सिंगल मार्बल पे बना हुआ है। हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक दीनदयाल उपाध्याय जी के पूरे देश में शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। पूरा पथ है वो उनके नाम से हो गया, नीति पथ के नाम से इसको जाना जाएगा।
लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इन आयोजनों के उलट कांग्रेस पार्टी ने पूरे आयोजन का विरोध किया है। राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज ही पूरे छत्तीसगढ़ में जेल भरो अभियान की घोषणा की है। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी कहते हैं कि बस्तर में 3 साल पहले माओवादी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 28 लोग मारे गए थे, लेकिन राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच सीबीआई जांच का मसला अब तक अटका हुआ है।
जीरम मामले की विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा सीबीआई से जांच कराने की घोषणा के बावजूद अभी तक कोई पहल सीबीआई से जांच की नहीं हुई है। किसानों को धान का बोनस देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रोक लगाई है।
कांग्रेस नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा और दूसरे आयोजनों का विरोध करने वालों में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस भी इन आयोजनों से नाराज है। अजीत जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है।
किसानों की समस्या गंभीर है, आत्महत्या कर रहे हैं, बोनस नहीं मिला है, समर्थन मूल्य नहीं मिला है, बीमा नहीं मिला है, मुआवजा राशि नहीं मिली है, तो हमको मिलने का समय दीजिए।
कांग्रेस के जेल भरो अभियान और दूसरे राजनीतिक दलों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रायपुर यात्रा से छत्तीसगढ़ को क्या कुछ हासिल होगा यह देखना महत्वपूर्ण है। झीरम में मारे गए कांग्रेसी नेताओं के मामले की सीबीआई जांच से लेकर किसानों को धान का बोनस देने तक कई सवाल हैं, जिनका साझा जवाब छत्तीसगढ़ और केंद्र की भाजपा सरकार को देना है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
कल अखबार नहीं आ पाया था, इस कारण से हम अखबारों की समीक्षा नहीं सुना पाए थे आज, लेकिन आज मौजूद हैं स्टूडियो में अखबारों के पुलिंदे के साथ दिलनवाज पाशा। बताइए क्या कह रहे हैं अखबार।
जी, आज के अखबारों में कल की सबसे बड़ी खबर जो भोपाल में कथित एनकाउंटर में सिमी के 8 विचाराधीन कैदियों की मौत हुई है उससे जुड़ी हुई है। दैनिक भास्कर लिखता है, 8 घंटे में पुलिस और एटीएस ने सभी आतंकियों को ढेर कर लिया बदला। और लगभग इसी तरीके की हेडिंग आज सारे अखबारों में है पहले पन्ने पर। इन कैदियों ने फरार होने से पहले एक सिपाही की कर दी थी जेल में, उनका नाम रमाशंकर यादव है। इंडियन एक्सप्रेस ने उनके बारे में कहानी छापी है और बताया है कि दिसंबर में वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। एक और खबर आज जो सभी अखबारों में है वो है अरविंद केजरीवाल का एक बयान जो उन्होंने कल एक कार्यक्रम में दिया। केजरीवाल ने कहा कि जजों के फोन टेप हो रहे हैं, ये न्यायपालिका पर सबसे बड़ा हमला है। हालांकि ये उनका एक बयान ही था और ये सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है दो जजों को आपस में कहते हुए कि उनके फोन टेप हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर ही यह खबर प्रकाशित है, भोपाल से ही है लेकिन ये थोड़ा अलग है। रविवार को भारत ने एशिया चैंपियनशिप में हॉकी में पाकिस्तान को हराया और इसमें गोल करने वाले भोपाल के एक खिलाड़ी अफ़ान यूसुफ अपने परिवार के 8वें खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने गोल किया है। तो एक ही परिवार से 8वें वो खिलाड़ी हैं। और एक और दिलचस्प खबर आज के दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है, एक कार मैकेनिक ने बंद पड़ा हेलीकॉप्टर ठीक कर दिया और उड़ा भी दिया। ये महाराष्ट्र के हैं मैकेनिक, इनका नाम है इम्तियाज मोमिन। और अगर भारत में व्यापार करने की बात हो तो सबसे आसानी से व्यापार करने की मौके जहां मुहैया हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सूची में पहले नंबर पर है।
ये सर्वे की रिपोर्ट है।
और बीबीसी पेनोरमा प्रोग्राम में एक खुलासा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि सुधीर चौधरी जो हथियारों के की डीलिंग्स करते हैं उन्हें रॉल्स रॉयस कंपनी ने 10 मिलियन पाउंड यानी 1 करोड़ पाउंड जो है दिए थे अब रिश्वत के तौर पे। जैसे भी ये खबर आज के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और जो तस्वीर ध्यान खींच रही है वो दिल्ली में प्रदूषण की तस्वीर आज अखबारों में पहले पन्ने पर है। और बताया गया है कि इस बार भले ही दिवाली के पटाखे कम बिके हों लेकिन दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज़्यादा हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। चंद दिनों पहले FBI के हिलेरी क्लिंटन के ईमेल मामले की फिर से जांच करने की बात उठने के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी डायरेक्टर जेम्स कोमी पर सवाल उठाती रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेता हैरी रीड ने तो जांच की बात को संसद को बताने को ही गैर कानूनी करार दे दिया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूस के साथ संबंधों के मामले की जांच FBI वैसे नहीं कर रही जैसे हिलेरी क्लिंटन के ईमेल मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अब राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मामले पर एक अलग ही रुख अपनाया है। ओबामा का ताल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुने दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में अब सिर्फ एक सप्ताह ही रह गया है और इसी बीच हिलेरी क्लिंटन के ईमेल को लेकर उठा विवाद और तूल पकड़ रहा है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी इस विवाद में प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ओबामा को नहीं लगता है कि FBI के निदेशक जेम्स कोमी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने एक बयान में कहा है कि FBI को अपना दायित्व निभाने के लिए स्वतंत्र रहने की जरूरत है। अर्नेस्ट ने कहा,
इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिशियल्स एट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द एफबीआई टू मेक दीज डिसीजंस कंसिस्टेंट विद देयर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटीज।
न्याय विभाग और एफबीआई के अधिकारियों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लें। न्याय विभाग और एफबीआई के उन अधिकारियों को व्यापक अधिकार और शक्तियां दी गई हैं जिनसे वो आम लोगों की निजी जिंदगियों में भी झांक सकते हैं, और ये अधिकार लंबे समय से चली आ रही परंपराओं, दिशा निर्देशों और मानदंडों से सुरक्षित हैं जो इन जांचों पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा रोकने के लिए हैं। वो लोग बेहद मुश्किल काम कर रहे हैं। ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जेम्स कोमी की हिलेरी ईमेल मामले की जांच फिर से शुरू करने को लेकर तीखी आलोचना की है। रविवार को सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैरी रीड ने एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी को लिखे पत्र में उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कोमी ने ट्रंप और रूस की सरकार के रिश्तों के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। बीते शुक्रवार को सीनेट को लिखे एक पत्र में जेम्स कोमी ने बताया था कि कुछ नए ईमेल सामने आने के बाद एफबीआई हिलेरी क्लिंटन के निजी ईमेल सर्वर इस्तेमाल करने के मामले की जांच फिर से शुरू कर रही है। एफबीआई ने जुलाई में ही इस मामले में हिलेरी को क्लीन चिट दी थी। ओहायो में एक रैली को संबोधित करते हुए हिलेरी ने कहा है कि उन्हें लगता है कि एफबीआई फिर से उसी नतीजे पर पहुंचेगी। हिलेरी ने कहा,
You know, why in the world the FBI would decide to jump into an election without evidence?
आप जानते हैं कि एफबीआई बिना किसी ठोस सबूत के चुनाव होने के कुछ दिन पहले ही विवाद में क्यों कूदेगी? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बार बार ये कह चुकी हूँ, आप भी जानते हैं, मुझसे गलती हुई है, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे किसी एक कर्मचारी का ईमेल देखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो फिर से उसी नतीजे पर पहुँचेंगे जिस पर वो इसी साल मेरे ईमेल देखने के बाद पहुँचे थे। इसी बीच हिलेरी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईमेल मामले की जड़ एफबीआई के हाथ लग गई है और एफबीआई अब डिलीट कर दिए गए 33,000 ईमेल को भी पढ़ सकेगी। मार्च 2015 में ये बात सामने आई थी कि विदेश मंत्री रहते हुए हिलेरी क्लिंटन ने ईमेल के लिए सरकारी सर्वर के बजाय अपना निजी सर्वर इस्तेमाल करके संघीय नियम तोड़े हैं। उन पर सुरक्षा जानकारियों को खतरे में डालने के आरोप भी लगे थे। इन चुनावों में उनका ईमेल विवाद अहम मुद्दा बन गया है।
ये थे दिलनवाज पाशा। महाराष्ट्र में एक मराठा लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के बाद से मराठा समुदाय सड़कों पर उतर आया है और आंदोलन कर रहा है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन साथ ही मराठे नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि SC/ST एक्ट में बदलाव लाया जाए क्योंकि दलित इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब की वजह से कई जगहों पर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये आंदोलन दलित विरोधी है, क्या इसकी मांगों का प्रभाव दलित और OBC समाज पर पड़ेगा। हमारे साथी जुबैर अहमद पिछले दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर थे, पुणे से उनकी ये रिपोर्ट।
जय भीम, एक मराठा, लाख मराठा, इन दिनों ये नारे महाराष्ट्र भर में गूंज रहे हैं, मानो कोई जाति की लड़ाई सी छिड़ गई हो। इन नारों से ऐसी राय बन रही है कि मराठा आंदोलन दलितों के खिलाफ है। पुणे में दलित पैंथर्स संस्था के अध्यक्ष बप्पू साहेब भोसले कहते हैं कि दलितों में आक्रोश है।
दलित महिलाओं के खिलाफ में सबसे बड़ा अत्याचार, आप खैरलाल जी की बात करो, भूत मांगेगी भाई, उस वक्त अपने मोर्चा नहीं निकाला, उस वक्त कैंडल इनके किधर गए भाई लोगों के। खैरलाल जी के लिए हम लड़े, अब क्या हर जात और धर्म के लिए वही जात के लोग लड़ेंगे क्या? मराठा के ऊपर अत्याचार हुआ तो मराठा लड़ेंगे, दलितों के ऊपर हुआ तो ब्राह्मणों को मुसलमान, अरे भाई देश बोल के एकजुट होकर कौन लड़ेगा?
आता लोकतंत्र सांगितलं भूमिका।
दलितों का ये मोर्चा अगस्त से जारी मराठा आंदोलन के जवाब में है। दलितों का एक वर्ग इस आंदोलन को अपने खिलाफ मानता है। घुमंतू समाज के एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बालचंद्र सावंत के अनुसार मराठा आंदोलन जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन मराठा आंदोलन से जुड़े सभी लोग इस धारणा को गलत मानते हैं। आंदोलन से जुड़ी कोल्हापुर में एक स्कूल की अध्यापिका आरती देवड़े कहती हैं,
हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम लोगों को किसी से छीन के नहीं लेना है, हमें हमारा जो हक है वो हमें चाहिए। उनके बारे में हम लोगों ने किसी ने भी कौन से भी जाति धर्म पंथ के लोगों के खिलाफ हमारे कौन से भी कुछ भी ये नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए।
कुछ दलित कहते हैं कि मराठा समाज की मांगों में दलित विरोधी भावना छिपी है। मुख्य मांगों के बारे में स्कूल मराठा छात्रा शिवानी कहती है,
जो गाँव है वहाँ पर जो एक
राशि मिले और दूसरा है कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और एट्रोसिटी जो जो लॉ है उसमें सिर्फ सुधारना हो।
महाराष्ट्र के बाहर ये सवाल किया जा रहा है कि मराठा समाज अचानक सड़कों पर क्यों आ गया। मराठा आंदोलन में पहले दिन से ही शामिल अहमदनगर के संजीव भोरे पाटिल कहते हैं ये आंदोलन अचानक नहीं शुरू हुआ है।
खोपड़ी की अत्याचार की जो घटना घटी है उसके पहले नवंबर 2015 और जनवरी 2016 को हम लोगों ने मैं और मेरे साथ बहुत सारे संगठन के लोग थे, हम लोगों ने मराठा रिजर्वेशन की मांग के लिए एट्रोसिटी कानून की मिसयूज के खिलाफ हम लोगों ने मराठा जाति का आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत सारे जिलों का दौरा करने का डिसीजन लिया था और हम लोगों ने 12 जिलों का दौरा किया था। इसके लिए मराठा जाति के मीटिंग्स ली थी हर जिले में, उसमें बहुत सारे संगठन के मराठा संगठन के लोग, मराठा समाज में जो बुद्धिजीवी लोग है, वो तज्ञ लोग है, अभ्यासक है, उनको भी हमने शामिल किया था। तो मराठा जाति का आंदोलन खड़ा करने का काम उसके पहले ही चल रहा था, पूरे महाराष्ट्र में ग्राउंड बन रहा था और उसमें ये खोपड़ी की घटना घटी मराठा जाति के नाबालिग लड़की के साथ और वो ये आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट है। तो उसके बाद समाज रास्ते पे निकला।
आज मराठा आंदोलन में राजा भी शामिल है और रंक भी। मराठा एकता एक चमत्कार की तरह से देखा जा रहा है। मराठा मोर्चे से जुड़े पूर्व न्यायाधीश पीबी सावंत कहते हैं
इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस मराठा कम्युनिटी हैज यूनाइटेड।
पीबी सावंत कह रहे थे कि मराठा समाज पहली बार इकट्ठा हुआ है और सड़कों पर उतर आया है। सभी वर्ग के लोग यानी तरक्की करने वालों से लेकर जमीनी स्तर से आए लोग सब एक साथ आ गए हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मराठा आंदोलन की शुरुआत 13 जुलाई को अहमदनगर के खोपड़ी गांव में हुए एक कांड के बाद हुई। इस वक्त मैं खोपड़ी गांव में हूं जहां पर 13 जुलाई को एक मराठा लड़की की हत्या और बलात्कार हुआ था, जिसके बाद ही मराठा आंदोलन शुरू हुआ। उस दिन शाम में वो जब निकली तो इसी रास्ते में जो हमारे पीछे रास्ता है वहां पे वो साइकिल से जा रही थी, जब गांव के ही तीन लड़कों ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसका बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी। तीन लोग इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कहती है कि तफ्तीश जारी है और उनके खिलाफ जो केस दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों से बातें कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि उनको पूरी तरह से संतुष्टि उसी वक्त होगी जब उन तीनों को फांसी की सजा दी जाएगी। अब तक 25 से अधिक मराठा मोर्चे अलग अलग शहरों में निकाले जा चुके हैं। इन मोर्चों में लाखों लोग शरीक हो रहे हैं। कहा जाता है कि इस आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, मोर्चे और जुलूस खामोश होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद मोर्चे संगठित और अनुशासित होते हैं। मराठा समुदाय के अनुसार ये मोर्चे न तो दलितों के खिलाफ हैं और न ही ओबीसी या किसी और समुदाय के खिलाफ। जुबैर अहमद, बीबीसी पुणे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
जो भी बोले, सवाल करे, न्याय मांगे, वो देशद्रोही, ऐसा कहा ना अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने भोपाल में हुए इनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है दिस इज मोदी राज, फेक इनकाउंटर्स, फेक केसेस, रोहित विरमुला, केजी बंसल, मिसिंग नजीब, दलित, एट्रोसिटी, गुंडाइज्म ऑफ एबीपी, आरएसएस, गौरक्षक। इस खबर को पढ़ना है तो आइए bbchindi.com पर। और अब अंत में सुनते हैं एक बार फिर से विश्व समाचार।
भोपाल में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए फरार विचाराधीन कैदियों के वकील ने कहा है कि वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। इटली के अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि रविवार को आए शक्तिशाली भूकंप में बर्बाद हुई इमारतों और गांव को फिर से बनाने में करीब 9 अरब डॉलर का खर्च आएगा। पाकिस्तान में विपक्षी नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के हजारों समर्थकों ने कहा है कि वो बुधवार को राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी सरकार विरोधी रैली में शामिल होंगे। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के अंतिम दिनों में विवाद खड़ा करने वाले हिलेरी ईमेल मामले में अब अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी प्रतिक्रिया दी है। गरीब देशों में महिलाओं और युवतियों में गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने के लिए चलाया जा रहा अभियान अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडेज क्रिचनर अपने परिवार के करीबी व्यापारी को सरकारी ठेके देने के आरोपों में अदालत के सामने पेश हुई हैं। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे देवाशीष कुमार। अगली मुलाकात ठीक एक घंटे में। नमस्कार।